141। इप्सिता वेटर के साथ अंदर की ओर बढ़ी। उसने देखा कि कमरा काफी अच्छी तरह से लैवेंडर फ्लावर से सजाया गया था। इप्सिता उसे देखकर मुस्कुराई। तभी उसकी नज़र अभिमन्यु पर पड़ी, जो बीच में रखी एक मेज पर बड़े ही आराम से बैठा हुआ था। जैसे ही इप्सिता ने अभिमन्यु को देखा, वो मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर की ओर बढ़ी। अभिमन्यु जल्दी से अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। उसने इप्सिता के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इप्सिता भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। उसने अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ में दिया। अभिमन्यु ने बड़े ही जेंटलमैन की तरह इप्सिता के बैठने के लिए उसकी कुर्सी को खिसकाया। इप्सिता बैठते ही मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच। वैसे आपकी मॉडलिंग के काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हो गए हैं, देखा हमने, आप तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई हैं। लेकिन इतनी फेमस होने के बाद हमें मत भूल जाइएगा, अभिमन्यु सामने वाले कुर्सी पर आकर बैठते हुए बोला। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर धीरे से शर्माते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी आप हमारे फ़ैन तो नहीं है ना। इप्सिता हंसते हुए बात बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने कहा, वैसे सच बताएं तो हमें ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपको अपना सपना पूरा करने का मौका मिला। एक तरह से देखा जाए तो जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। हाँ, हम जानते हैं कि आपको थोड़ी तकलीफ ज़रूर हुई थी, लेकिन अब जब हम आपके सक्सेसफुल करियर को देख रहे हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ देखकर बड़े ही प्यार से ये बात बोल रहा था। इप्सिता उसकी बात सुनकर मुस्कुराई, लेकिन उसे इस बारे में बात करना कभी भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने टॉपिक बदलते हुए कहा, बाय द वे आप ये बताइए कि आप यहाँ कब से वेट कर रहे हैं। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर मुस्कुराया, उसके बगल में आकर बैठते हुए बोला, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी ये आपसे मिलने के लिए तो हम पूरे दिन का वेट कर सकते हैं, तो ये एक घंटे का वेट तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम तो पिछले 6 महीने से ही सिर्फ आपके साथ होने का इंतज़ार कर रहे थे। इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी उसने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, क्या हमने आपको 1 घंटे तक वेट कराया, और पिछले 6 महीने, उस बारे में तो हमें पता भी नहीं था। अभिमन्यु इप्सिता के हाथ पर अपना हाथ रखकर धीरे से उसका हाथ थपथपाते हुए बोला, इट्स ओके, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हम खुद ही आपके सामने नहीं आए थे क्योंकि हम आना नहीं चाहते थे, और वो सब कुछ ज़रूरी भी था आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। इप्सिता ने सफाई देते हुए कहा, हाँ, और हमें कुछ पता ही नहीं था इन सबके बारे में, बस आज क्या है ना, नंदिनी कार लेकर चली गई थी तो हमें कैब बुक करनी पड़ी, आप तो जानते ही हैं कैब में थोड़ा टाइम लगता है, फिर यहाँ मुंबई का ट्रैफिक, इसी वजह से हमें इतना टाइम लग गया। इस पर अभिमन्यु ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या खाएंगी आप, ऑर्डर करिए। ये सुनकर इप्सिता मुस्कुराते हुए बोली, खाकर तो हम भी कुछ नहीं आए हैं, बट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या ऑर्डर करें। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आप आराम से देख लीजिए, हमें किसी बात की जल्दबाजी नहीं है। इतना बोलकर अभिमन्यु आराम से कुर्सी का टेक लगाकर बैठ गया। वो इप्सिता के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराता जा रहा था। इप्सिता ने अपने लिए 2 डिशेज ऑर्डर की। अभिमन्यु ने वेटर को बुलाकर उसे खाना लाने के लिए कहा। वो चुपचाप इप्सिता के चेहरे की तरफ देखने लगा। इप्सिता ने अभिमन्यु को नोटिस किया। उसने थोड़ी हैरानी से पूछा, क्या बात है, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, हमारे फेस पर कुछ लगा है क्या। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, हम तो बस ये देख रहे हैं कि आप पहले से और भी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनी, वो थोड़ा सा शर्माते हुए बोली, इतनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। अभिमन्यु इप्सिता के करीब जाकर उसके हाथ को अपने हाथ में लिया, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, ज़रूरी तो और भी बहुत कुछ है, एंड आई लव यू इप्सिता। इप्सिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, उसके गाल एकदम लाल हो गए थे। तभी अभिमन्यु ने इप्सिता के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप खुद नहीं जानती कि हम आपसे कितना प्यार करने लगे हैं। इप्सिता उसकी बात सुन रही थी, उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। तभी इप्सिता ने अभिमन्यु के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अच्छा, और आपकी उस अवंतिका का क्या। जैसे ही इप्सिता ने अवंतिका का नाम लिया, अभिमन्यु का मुंह बन गया। उसने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, प्लीज इप्सिता, अब आप अवंतिका का नाम लेकर हमारा मूड खराब मत करिए, वैसे भी हम अब उसे पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से निकाल चुके हैं, वो वैसे भी हमारे लिए इतनी मायने नहीं रखती थी, और अब अगर कोई लड़की है जिसने हमारे दिल और दिमाग पर कब्जा कर रखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। हाँ, हम जानते हैं, अब आप ये बोलेंगी कि हमने तो आपसे कहा था कि हम अभी तक अवंतिका से मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, लेकिन अब सच बताएं, हमें शायद तब इस बात का एहसास ही नहीं था, लेकिन जब आप हमसे दूर हुई, इन 6 महीनों में हम आपसे एक बार भी बात नहीं कर पाए, तब हमें अपने सच्चे प्यार का एहसास हुआ कि अवंतिका के साथ हमारा जो कुछ भी था शायद वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था, सच्चा प्यार किसे कहते हैं वो हमें तब समझ आया जब आप हमारी लाइफ में आई। अभिमन्यु पूरी फीलिंग्स के साथ ये सारी बातें बोल रहा था। इप्सिता बस चुपचाप उसकी बात सुनती जा रही थी। तभी अभिमन्यु ने एकदम ही सीरियस होकर कहा, अब आप प्रॉमिस करिए कि आप कभी भी हम दोनों के बीच में अवंतिका का नाम नहीं लेंगी, प्लीज। क्योंकि हमारे लिए अब अगर कोई इम्पॉर्टेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। भले ही अवंतिका हमारी लाइफ की पहली लड़की थी, लेकिन आप अब हमारी लाइफ की आखिरी लड़की होंगी। अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनकर इप्सिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। तभी अभिमन्यु आगे बढ़ा और उसने इप्सिता के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई। वो इप्सिता के बिल्कुल करीब जाकर उसके दाल पर किस करने लगा। जैसे ही अभिमन्यु के होंठ इप्सिता के गाल पर छुए, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अभिमन्यु उसे इस तरह शर्माते देखकर मुस्कुराने लगा। तभी उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। अभिमन्यु इप्सिता से दूर हो गया। तभी वेटर उन दोनों का ऑर्डर लेकर अंदर आया। उसने उसे मेज पर रखा। वहीं दूसरी तरफ अर्पिता समर्थ की आंखों में आंखें नहीं मिला पा रही थी। समर्थ ने उसके चेहरे को अपनी ओर घुमाकर उसके गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अब हमारी आंखों में आंखें डालकर ये बात बोलिए कि आप हमसे प्यार नहीं करती या आपने कभी भी हमसे प्यार नहीं किया। अर्पिता काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। उसने समर्थ के हाथों को अपने गाल पर से हटाया। वो अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, प्लीज समर्थ, अभी आप यहां से जाइए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। समर्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अर्पिता, आपको ऐसा लगता है कि हम आपको यहां पर ऐसे ही छोड़कर जाएंगे? अर्पिता समर्थ की बात सुनकर अपनी आंखों को कसकर बंद करने लगी। उसकी आंखों के कोने से आंसू निकल रहे थे। समर्थ उसके करीब आया, उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, आप ये आंसू डिजर्व नहीं करती हैं। सच बताऊं तो आप जिसके लिए रो रही हैं वो इंसान आपको कभी डिजर्व नहीं करता था। अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए, आपको कुछ भी सहने की जरूरत नहीं है। आप इस डाइवोर्स पेपर पर साइन करिए और इसे जयराज को भिजवा दीजिए। अर्पिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं समर्थ, आप समझ नहीं रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, मासा और भाईसा। अर्पिता बोल ही रही थी कि समर्थ उसके करीब गया।
उसने उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे झकझोड़ते हुए कहा, बस बहुत हुआ अर्पिता, कब तक आप दूसरों के बारे में सोचती रहेंगी, कभी अपने बारे में भी सोचा करिए। मासा और अभिमन्यु क्या सोचेंगे, उसके लिए आप कब तक खुद को ऐसे ही दर्द देती रहेंगी। बस करिए सबके बारे में सोचना। खबरदार, अगर अब आपकी आंखों से एक आंसू भी निकला, अगर आप उस जयराज के लिए एक और बार रोई, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम उस जयराज को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए चुपचाप इस सच्चाई को एक्सेप्ट करिए कि वो आदमी आपको डिजर्व नहीं करता। वैसे भी आप उसके लिए कैसे रो सकती हैं जो आपके सामने दूसरी औरतों के साथ रंगरलियां मनाता हो। समर्थ इतना बोलकर चुप हुआ। अर्पिता हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। समर्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या लग रहा था अर्पिता आपको कि हमें इस बारे में पता नहीं होगा? हमें सब कुछ पता है, उस इंसान ने आपको कितनी तकलीफें दी हैं, फिर भी आप उसके बारे में इतना कुछ सोच रही हैं? कम ऑन अर्पिता, आप और मैं जानते हैं कि आप इतनी स्ट्रांग हैं कि उस आदमी के बिना आप बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ बिता सकती हैं, इसलिए अब आपको उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। जाइए, रोना धोना बंद करिए, हमारे साथ मासा के पास चलिए, हम उन्हें सारा सच बताएंगे। इतना बोलकर समर्थ ने डाइवोर्स पेपर उठाया और वो अर्पिता की तरफ देखने लगा। अर्पिता उसकी बातें सुनकर कुछ सोच रही थी। समर्थ उसके पास आकर बोला, आप क्या सोच रही हैं अर्पिता? अर्पिता ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, समर्थ, अगर हम आपसे कुछ कहें तो क्या आप हमारी बात मानेंगे? इतना बोलकर अर्पिता ने अपने आंसू पोंछे और वो समर्थ की तरफ बड़ी उम्मीद से देखने लगी। टू बी कंटिन्यूड।